ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी शादी के बाद जब विदाई का अवसर आता है तो आपको एक ही गाना सुनाई देगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। ये गाना 1968 में फिल्म नीलकमल के लिए मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा था। 50 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन आज भी इस दर्द भरे गीत को सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। 100 साल पहले 8 मार्च 1921 को जन्मे साहिर लुधियानवी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। 25 अक्टूबर 1980 को उनका देहांत हो गया था, लेकिन आज के समय में भी उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि YouTube पर उनके गीतों को बराबर सुना जा रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। आप कैसा गीत सुनना पसंद करेंगे? देशभक्ति का, ये देश है वीर जवानों का, जिंदगी के दर्शन का, मैं पल दो पल का शायर हूँ, या फिर गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, या फिर आप बेफिक्री के अंदाज का गीत सुनेंगे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या फिर कोई आशावादी गीत सुनेंगे, तकबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, या फिर कोई एकता का प्रतीक गीत सुनेंगे, तो हिंदू ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हो सकता है आपको वतन परस्ती का प्रतीक कोई गीत पसंद हो, तो फिर ये भी है आपके सामने, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबाँ हैं आँखें। अगर आपको रोमांटिक गीत पसंद हैं तो फिर ऑल टाइम फेवरेट ऐ मेरी जोहर जबी, या फिर मोहब्बत बड़ी काम की चीज़ है, चलो फिर से एक बार अजनबी हो जाएं, या फिर जिंदगी भर न भूलेगी बरसात की वो रात। अगर आपको महिलावादी मुद्दों पर गीत पसंद हैं तो फिर कौन भूल सकता है ये गीत, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। अगर आपको हास्य गीत पसंद है तो फिर ये सुनिए, प्यार का होवे झगड़ा या बिजनेस का रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। इसके अलावा कई गीत ऐसे भी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये लिस्ट तो शायद ही ख़त्म हो और साहिर लुधियानवी के गीत आपको याद आते जाएंगे। ये सोच लीजिए कि अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग चीज़ों पर जितने भी गीत आपने सुने वो सब साहिर लुधियानवी के लिखे हुए हैं। अगर साहिर के गीतों की चर्चा की जाएगी तो शायद बात ख़त्म ना हो। क्या थे साहिर? एक ऐसा इंसान जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो हर जगह, हर मुशायरे में, हर कवि सम्मेलन में अपनी माँ को साथ ले जाते थे। लुधियाना शहर में उनका जन्म हुआ। असली नाम अब्दुल हई था। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई लुधियाना से की। उसी दौरान उनकी नज्म शोला नवाई जब्त कर ली गई। उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से निकाले गए, फिर दयाल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया, फिर इस्लामिया कॉलेज लाहौर में भी एडमिशन लिया, लेकिन उसी साल उन्होंने वो कॉलेज भी छोड़ दिया। लेकिन साहिर आज़ादी के बाद हिंदुस्तान आ गए। उसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 फिल्म ताजमहल का गाना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और फिल्म कभी कभी का ये गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। साहिर को हवाई जहाज़ से डर लगता था, बहुत कम शायद ही चले, वह हमेशा कार या ट्रेन से ही सफ़र करते थे। लिफ्ट से भी डर लगता था, इसलिए अक्सर वो उस संगीतकार से बचते थे जिसके फ्लैट पर जाने के लिए लिफ्ट से जाना पड़े। एक बार उपन्यासकार कृष्णचंद्र के साथ रात में सफ़र कर रहे थे, डाकुओं ने उनको घेर लिया, लेकिन जब पता चला कि डाकुओं के जीवन पर बनी फिल्म मुझे जीने दो के गीत इन्होंने लिखे हैं, तो उनको तुरंत छोड़ दिया गया। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। मुंबई में रहने वाले गीतकार हसन कमाल का साहिर का काफ़ी साथ रहा। हसन कमाल के गीतों में साहिर की छाप दिख जाती है। उन्होंने साहिर के साथ अपने कुछ पल SBS से साझा किए।
मेरी उनसे पहली मुलाकात लखनऊ में हुई, जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक मुशायरे में आए, तो वही जाहिर है कि जो रिसेप्शन कमेटी थी उसमें मैं शामिल था, और उनको लेने के लिए मुझे भेजा गया चारबाग स्टेशन, क्योंकि साहिल लुधियानवी हवाई जहाज से सफ़र नहीं करते, उन्हें ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज से सफ़र नहीं किया, तो मैं उन्हें लेने गया और उन्हें लेके आया, और मैं तो उनका बड़ा ज़बरदस्त फैन था उनकी शायरी का। तो खैर, हम जाके उनकी होटल में ठहरना था, वहाँ ठहराया गया। फिर लोगों ने उन्हें बताया कि ये हसन कमाल साहब, ये हसन कमाल हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ये आपकी शायरी के बहुत बड़े फैन हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो नज्म है, तवील नज्म परछाइयाँ 19 पेज की नज्म, वो इन्हें जबानी याद, तो वो बहुत उनका अच्छा। और फिर उसके बाद उनका अच्छा नौजवान सुनाओ मुझे, तो मैंने उनको उनकी वो तमाम नज्म तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं पूरी सुना दी। तो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई नौजवान, तुम तो मुझसे भी अच्छा पढ़ते हो, तो तुम ऐसा करो कि आज मेरे बजाय तुम मुशायरे में तुम पढ़ दो। ये तुम, तो मैंने कहा कि नहीं, आपकी मौजूदगी में लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, मैं तो महाराज फैन हूँ आपका। तो फिर उसी जमाने में उनकी एक फिल्म शायद धूल का फूल जल्दी सुनती, तो उसमें गाने बड़े हिट हुए थे, मुझे उसमें कुछ गानों में तलफ़ की गलती थी, तो मैंने उनसे शिकवा किया कि वो साहब गाने बहुत अच्छे हैं, धुनें भी अच्छी हैं, महेंद्र कपूर साहब ने गाया भी बहुत अच्छा है, लेकिन साहब उनका तलफ़ बहुत ख़राब है, बेकरारों को उन्होंने बेकरारों गाया है, बड़ा बुरा लगता है। तो वहाँ से कहेंगे कि मेरा तलफ़ तो उससे भी ज़्यादा ख़राब। तो खैर उनके सराह फिर बातचीत होती रही, मुशायरे से वो चले गए अपनी यादें देखे। और फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया, जब मुझे पुलिस में मुलाजमत मिली और मैं आया, तो जाहिर है कि मुझे तलब थी इन तमाम लोगों से मिलने की जो तरक्की पसंद तहरीक के बड़े नाम थे यहाँ पर, करीम चंद्र और सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी और साहिब लुधियानवी, अस्मत टापा, कुरतुल्लैन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, सब यहाँ मुझे सबसे मिलने का इश्तियाक था। तो मैं मिला तो साहिब रिजवानी साहब से भी मिला, साहिब रिजवानी साहब से, क्योंकि उनको मालूम था मैं उनका फैन हूँ, तो ज़रा बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते थे और मेरे उनके ताल्लुकात इस तरीके से बढ़ते चले गए। और ये जब उनके यहाँ कोई दावत ववत होती थी तो उनके फ़ोन करते थे ब्रिटिश में कि नौजवान आज मेरे घर में दावत है, ज़रा आ जाइएगा, पंजाबी में बोलते थे, और ज़रा आ जाइए, कुछ सब सामान वाल लीजिएगा। तो मैं चला जाता था, तो इस तरीके से रहा। और ये ताल्लुक आखिरी वक्त तक रहा, सिवाय इसके कि मुझे जब उनका जब वो दुनिया से गए तो मैं इत्तेफाक से बम्बई में नहीं था, उस वक्त मैं कनाडा में था, मुशायरों में गया हुआ था, वहाँ इतला मिली। मुझे ये अफसोस उम्र भर रहेगा कि मैं उनकी आखिरी सफ़र में मैं उनका साथ नहीं दे सका, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचा सका जो उनकी आखिरी मंजिल थी। तो ये मुस्तफिल एक मुख्तसर वो है, और मैं उनके गानों का शायरी का शहदाई था, आज भी हूँ, उनके कई कई गाने मुझे आज भी ज़बानी याद हैं, उनकी कई नज़में मुझे आज भी ज़बानी याद है। और मैं समझता हूँ कि उनके बाद जो शायर आए उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, जिनकी शायरी पर तालीम जानवी की परेशानियाँ थी हैं, और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि मैं इसे अपने लिए बड़ी सआदत और अपने लिए एक खुशनवी भी समझता हूँ।
साहिर का एक और करिश्मा देखिए, ताजमहल को मोहब्बत की निशानी माना जाता है, अनगिनत शायरों ने ताजमहल के बारे में लिखा है और सभी ने इसमें मोहब्बत, प्रेमी प्रेमिका, संगमरमर की इमारत और उसकी खूबसूरती झलकती हुई कुछ न कुछ कविताएं लिखी हैं। अब आप साहिर को देखिए, उन्होंने ताजमहल के बारे में क्या लिख दिया। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्काश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अब आप बताइए, क्या कोई गीतकार ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत के बारे में इस प्रकार का कमेंट कर सकता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाफिक किदवाई इस बात को समझाते हुए कहते हैं,
ताजमहल में ये था कि उन्होंने ये कहा था ना, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत को उड़ाया है मजाक, तो एक तरह के यानी एक नए तरह से ताजमहल को जिसको हम समझते थे लव सिंबल है, बट इट इज अ सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल, है ना, कैपिटलिज्म ने उसको कैसे यूज किया है, कि दौलत का, कि तमाम लोग जो मोहब्बत करते हैं वो अपनी अपनी महबूबाओं की याद में वो नहीं बना सकते हैं ताजमहल, है ना, मुमताज महल की। तो एक तरह का उनका एक तरह का मतलब एक्ट जो था, इट दैट पुट अस टू शेम, कि हम लोगों में एहसास है कमी इंफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता था कि वी डिड नथिंग और शहनशाह ने ये कर दिया। तो ये उन्होंने कहा, शहनशाह ने दौलत कम, तो इस वजह से टीनएजर्स में या नए लोगों में जिनकी कविता बहुत पसंद की जा रही थी, उसका सिर्फ हुस्न नहीं है बस, उसमें एक्सप्लॉयटेशन का भी है और अपना मतलब एक जरा का जो एक है ना, एक जो पार है उसको एंजॉय करना, लव को भी एक पार के मतलब असर समझना, ये एक उसका वो था। और इनकी टीनेजर पोएट्री थी, वो लोगों को, इनका पहला मजमुआ था तलखियां, वो बहुत लोग पसंद करते थे। और इनकी जो नज्म जो है, जो सबसे अहम नज्म है वो परछाइयां है, वो सीरियस नज्म है, वो पीस के, वर्ल्ड पीस पे जो है वो मतलब एक पहला एक तरह का पोएटिक डिस्कोर्स है वो। और इन्होंने कहा कि जंग से कोई, जंग जो है इट कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग, इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ह्यूमैनिटी एवर फेस्ड। जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग तो खुद ही सबसे बड़ा मसला है। तो ये है ना, जंग से हम चाहते हैं कि पीस कायम हो जाएगा या फिर दुनिया एक नई दुनिया बन जाएगी, ये नहीं। जंग तो खुद ही सबसे बिगेस्ट जो है हर्डल है ह्यूमैनिटी में, वो जंग है, वो वार है। वार कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग।
कम लोग जानते होंगे कि लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय ने गुलाब की एक किस्म बनाई और उसका नाम साहिर रखा। बहुत कुछ लिखा गया है साहिर और अमृता प्रीतम के बारे में। जब साहिर की मृत्यु हुई तब अमृता बुल्गारिया में थी। उन्होंने खुद लिखा है कि जब 1957 में अमृता को साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला तो वो सोचने लगी कि जिसके लिए लिखा उसने तो ये पढ़ा भी नहीं। एक प्रेस फोटोग्राफर जब उनकी फ़ोटो लेने आया तो अमृता एक सादे कागज़ पर साहिर 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 लिखने लगी। फ़ोटो हो गई, फिर सोचा कि अगर ये छप गई तो क्या होगा। लेकिन वो फ़ोटो तो छपी लेकिन साहिर का नाम नहीं आया और सिर्फ कोरा कागज आया। साहिर एक ऐसे गीतकार थे जिनके हिसाब से निर्माता निर्देशक चलते थे। नौजवान लड़के लड़कियों में उनका अलग क्रेज था। आज साहिर नहीं है लेकिन उनके गीत अमर हैं। साहिर के ही गीत का मुखड़ा है, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। लखनऊ से फैसल फरीद।